एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम लोकतंत्र की दुनिया में एक कह सकते हैं गहरी डुबकी लगाने वाले हैं, लेकिन एक खास रास्ते से चलेंगे। हम बात करेंगे एलेक्सिस डी टॉकविल की।
हाँ, वही फ्रांसीसी विचारक जिन्होंने करीब क्या 200 साल पहले अमेरिका घूमकर लोकतंत्र पर कुछ ऐसी बातें कह दी जो आज भी मतलब हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं।
बिल्कुल। और इस सफर में हमारे गाइड होंगे एक और बड़े विचारक, हार्वी मैन्सफील्ड, हार्वर्ड के जाने माने पॉलिटिकल फिलोसोफर।
सही कहा। तो आज हम सीधे सीधे टॉकविल को नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि हम मैन्सफील्ड की नज़रों से देख रहे हैं कि वो टॉकविल के विचारों को कैसे समझते हैं और क्यों वो उन्हें आज के लिए इतना जरूरी मानते हैं।
हाँ, और हमारे स्रोत भी मैन्सफील्ड की टॉकविल पर लिखी हुई व्याख्याओं के कुछ अंश ही हैं। तो सवाल यही उठता है कि भाई 19वीं सदी का एक फ्रांसीसी अभिजात, उस वक्त लोकतंत्र बिल्कुल नई चीज थी, उसके कहे शब्द आज हमारे लिए क्यों मायने रखते हैं?
खासकर जब हम बराबरी मतलब इक्वालिटी और आजादी यानी लिबर्टी की बात करते हैं।
हाँ, क्या ये हो सकता है कि बराबरी की चाहत हमारी आजादी के लिए ही खतरा बन जाए? सुनने में अजीब लगता है ना।
बिल्कुल। और मैन्सफील्ड हमें यही दिखाते हैं कि टॉकविल ने इसी कॉम्प्लेक्सिटी को, इसी उलझन को पकड़ा था। उनकी बातें सिर्फ अमेरिका के बारे में नहीं की।
अच्छा।
नहीं, वो तो आधुनिक लोकतंत्र के स्वभाव के बारे में थी। तो चलिए मैन्सफील्ड के साथ टॉकविल के इस दुनिया को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं।
चलिए तो शुरुआत करते हैं इन दो लोगों से। पहले एलेक्सिस डी टॉकविल, 1805 से 1869 तक फ्रांस के एक कुलीन परिवार से थे।
एरिस्टोक्रेट।
और उनके परिवार ने फ्रांसीसी क्रांति की उथल पुथल देखी थी।
शायद इसीलिए वो लोकतंत्र को सिर्फ मतलब गुलाबी चश्मे से नहीं देख पाए।
वो इसके समर्थक थे, पर
एक सतर्क समर्थक।
हाँ,
हाँ, उनकी पृष्ठभूमि ने उन्हें एक बहुत ही अनोखा नजरिया दिया। वो लोकतंत्र को जैसे बाहर से देख रहे थे, एक ऐसी चीज जो उनके अपने समाज से बिल्कुल अलग थी।
हाँ, आउटसाइडर पर्सपेक्टिव।
बिल्कुल। और इसी बाहरी नजर ने उन्हें वो चीजें देखने में मदद की जो शायद अंदर वाले देख ही नहीं पाते या उसे नॉर्मल मान लेते हैं।
अच्छा, अब बात करते हैं हार्वे मैन्सफील्ड की। ये हार्वर्ड में प्रोफेसर हैं, पॉलिटिकल फिलॉसफी के बड़े विद्वान माने जाते हैं। मैकियावेली, अरस्तु, इन सब पर उन्हें काफी काम किया है।
हाँ, और मैन्सफील्ड की खासियत यह है कि वो टॉकविल को सिर्फ एक इतिहासकार या समाजशास्त्री नहीं मानते। उनके लिए टॉकविल लोकतंत्र के मनोवैज्ञानिक और दार्शनिक हैं।
अच्छा।
और मैन्सफील्ड खुद हाँ थोड़े कंजर्वेटिव माने जाते हैं और शायद इसीलिए वो टॉकविल के उन हिस्सों पर ज्यादा जोर देते हैं जहाँ टॉकविल लोकतंत्र में महानता जिसे वो ग्रेटनेस कहते हैं या उत्कृष्टता मतलब एक्सेलेंस उसके भविष्य को लेकर चिंता जताते हैं।
सही का। मैन्सफील्ड का मानना है कि टॉकविल सिर्फ ऊपर ऊपर से लोकतंत्र की तारीफ नहीं कर रहे थे, वो तो उसके गहराइयों में छिपे जो विरोधाभास थे, कॉन्ट्रडिक्शंस थे, उनको समझ रहे थे।
बिल्कुल। खासकर आजादी और बराबरी के बीच का वो बहुत ही नाजुक रिश्ता, वो टॉकविल को एक गंभीर विचारक के तौर पर पेश करते हैं। कहते हैं कि उनकी चेतावनियों पर हमें आज भी ध्यान देना चाहिए।
तो मैन्सफील्ड की व्याख्या का कह सकते हैं मूल विचार क्या है, सार क्या है?
उनका कहना है कि टॉकविल आधुनिक लोकतंत्र को समझने के लिए, खासकर अमेरिकी लोकतंत्र और दुनिया पर उसके असर को समझने के लिए शायद सबसे जरूरी विचारक हैं। मतलब टॉकविल ने लोकतंत्र की नब्ज पकड़ ली थी, उसकी ताकत भी और उसकी कमजोरियां भी।
और वो सबसे बड़ी उलझन जिसे मैन्सफील्ड बार बार सामने लाते हैं वो है लोकतंत्र का अपना ही विरोधाभास।
हाँ, पैराडॉक्स। एक तरफ देखो, लोकतंत्र और बराबरी लोगों को सम्मान देते हैं, मौका देते हैं, ये तो शानदार बात है।
बिल्कुल।
लेकिन दूसरी तरफ यही बराबरी का माहौल कहीं ना कहीं व्यक्तिगत खासियत को, नई सोच को और यहाँ तक कि सच्ची आजादी को भी दबा सकता है।
और इसी को टॉकविल ने बहुमत की तानाशाही और एक और शब्द था, नरम तानाशाही कहा था।
हाँ, टायरनी ऑफ द मेजॉरिटी और सॉफ्ट डेस्पोटिज्म।
तो यहाँ असली सवाल ये खड़ा होता है और मैन्सफील्ड के जरिए टॉकविल हमसे यही पूछते लगते हैं, क्या हम बराबरी का पीछा करते करते अपनी आजादी और अपनी असल पहचान ही खो देंगे?
क्या एक ऐसा समाज बन जाएगा जहां सब बराबर तो हों पर कोई भी सचमुच आजाद या महान न हो? मैन्सफील्ड कहते हैं कि टॉकविल का काम हमें इसी खतरे से आगाह करता है और शायद बचने के रास्ते भी सुझाता है।
चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। मैंसफील्ड के नजरिए से टॉकविल के कुछ मुख्य विचारों को देखते हैं। पहला है टॉकविल का खुद का नजरिया और उनका नया राजनीति विज्ञान।
हाँ, जैसा हमने कहा टॉकविल अभिजात वर्ग से थे, मैंसफील्ड इस बात पर जोर देते हैं कि इसी वजह से वो लोकतंत्र को ज्यादा पैनी नजर से देख पाए। मतलब वो उन चीजों को देख सकते थे
जिन्हें लोकतंत्र में पले बड़े लोग शायद सामान्य मान लेते हैं।
बिल्कुल, और टॉकविल के लिए लोकतंत्र सिर्फ चुनाव या सरकार का ढांचा नहीं था, वो इसे एक सामाजिक अवस्था कहते थे जिसकी बुनियाद है स्थितियों की समानता, इक्वालिटी ऑफ कंडीशंस। और मैंसफील्ड समझाते हैं कि ये बराबरी सिर्फ कानून में नहीं है, ये तो लोगों की सोच, उनके रहन सहन, उनके रिश्ते, हर चीज में घुस जाती है।
और इसी समझ के आधार पर मैंसफील्ड कहते हैं कि टॉकविल ने एक पूरी तरह नई दुनिया के लिए एक नया राजनीति विज्ञान बनाया। ये सिर्फ थ्योरी की बात नहीं थी।
तो क्या था?
ये समझने की कोशिश थी कि लोकतंत्र असल में लोगों को कैसे बदलता है, उनके दिल, दिमाग और आत्मा को, और इस बदलाव के बीच आजादी को कैसे जिंदा रखा जाए। ये एक तरह का प्रैक्टिकल, साइकोलॉजिकल और मॉरल साइंस था। अब आते हैं टॉकविल की मशहूर अमेरिका यात्रा पर। मैंसफील्ड बताते हैं कि ये कोई टूरिस्ट ट्रिप नहीं थी।
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। टॉकविल अमेरिका को लोकतंत्र की प्रयोगशाला, एक लैब की तरह देख रहे थे। वो समझना चाहते थे कि ये नई व्यवस्था असल में काम कैसे करती है, इसके नतीजे क्या होते हैं।
और उन्होंने लगातार अमेरिका की तुलना फ्रांस और यूरोप से की।
हाँ, तुलनात्मक विश्लेषण। और इस प्रयोगशाला में उन्हें जो सबसे खास चीज दिखी वो थी समानता, इक्वालिटी। टॉकविल ने माना कि यही लोकतंत्र की जान है, यही उसे आगे बढ़ाती है।
लेकिन मैंसफील्ड हमें याद दिलाते हैं कि टॉकविल ने राजनीतिक बराबरी, जैसे वोट का हक, और सामाजिक बराबरी, मतलब लोगों के बीच ऊंच नीच का कम होना, सोच में बराबरी का भाव, इसमें फर्क किया था।
बिल्कुल, और उनका मानना था कि सामाजिक बराबरी का असर कई ज्यादा गहरा होता है।
हाँ, और ये सामाजिक बराबरी लोगों की महत्वाकांक्षाओं को बदल देती है। सब सोचते हैं कि वो कुछ भी बन सकते हैं, पर शायद महान बनने का सपना वो कम हो जाता है।
रिश्ते ज्यादा अनौपचारिक हो जाते हैं, पर शायद उतने गहरे नहीं रहते। एक अजीब सी बेचैनी रहती है हमेशा दूसरों से तुलना करने की। मैंसफील्ड बताते हैं कि टॉकविल ने इन मनोवैज्ञानिक प्रभावों को कितनी बारीकी से पकड़ा था।
बहुत सूक्ष्म विश्लेषण।
इससे जुड़ा हुआ एक और दिलचस्प पहलू है नागरिक समाज और स्वैच्छिक संगठन, वॉलंटरी एसोसिएशंस।
हाँ, ये टॉकविल को बहुत हैरान करने वाली चीज लगी थी अमेरिका में कि अमेरिकी लोग हर छोटे बड़े काम के लिए खुद ही ग्रुप बना लेते थे। स्कूल चलाना हो, लाइब्रेरी बनानी हो, कोई सामाजिक मुद्दा उठाना हो,
वो सरकार का इंतजार नहीं करते थे।
बिल्कुल नहीं,
वे खुद ही जुट जाते थे।
बिल्कुल।
और मैंसफील्ड बताते हैं कि टॉकविल के लिए ये ग्रुप्स लोकतंत्र की रीढ़ थे।
क्यों? ऐसा क्यों मानते थे वो?
क्योंकि ये सरकार और अकेले नागरिक के बीच एक पुल का काम करते हैं। ये लोगों को मिलकर काम करना सिखाते हैं, उनमें जिम्मेदारी का भाव जगाते हैं, और सबसे जरूरी, ये उस अकेलेपन को, उस आइसोलेशन को रोकते हैं जो लोकतंत्र में व्यक्ति को घेर सकता है। मैंसफील्ड कहते हैं कि ये जुड़ने की कला, जिसे टॉकविल आर्ट ऑफ एसोसिएशन कहते हैं, आज शायद और भी जरूरी हो गई है जब हम सब अपनी अपनी डिजिटल दुनिया में ज्यादा खोए रहते हैं।
सही बात है, लेकिन टॉकविल सिर्फ तारीफ नहीं कर रहे थे, उन्होंने खतरों को भी उतनी ही बारीकी से देखा। एक बड़ा खतरा था बहुमत की निरंकुशता, टायरनी ऑफ द मेजोरिटी।
हाँ, और मैंसफील्ड समझाते हैं कि इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि बहुमत वोट के जरिए अल्पमत को दबा देगा। डर इससे कहीं ज्यादा गहरा था।
क्या मतलब? कैसा डर?
डर था सोच की गुलामी का, इंटेलेक्चुअल कन्फॉर्मिटी का। जब समाज में एक ही राय हावी हो जाती है तो अलग सोचने वालों पर भारी दबाव बनता है।
अच्छा।
लोग डरने लगते हैं कि अगर वो कुछ अलग कहेंगे या करेंगे तो समाज उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। नतीजा, विचारों की विविधता खत्म, नई सोच खत्म।
और मैंसफील्ड बताते हैं कि टॉकविल के लिए ये सामाजिक दबाव, ये सोशल प्रेशर, कानूनी पाबंदी से भी ज्यादा खतरनाक था।
बिल्कुल, ये आज सोशल मीडिया के जमाने में तो और भी ज्यादा दिखता है। नहीं, जहां जरा सी अलग राय पर लोग कैसे ट्रोल करने लगते हैं।
हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और फिर आता है वो खतरा जो शायद सबसे ज्यादा डरावना है, क्योंकि वो दिखता नहीं आसानी से, नरम तानाशाही, सॉफ्ट डेस्पोटिज्म।
हाँ, ये टॉकविल की सबसे मौलिक और चिंताजनक भविष्यवाणियों में से एक है, और मैंसफील्ड इसे बहुत अहमियत देते हैं।
ये कोई हिटलर या स्टालिन जैसा तानाशाह नहीं है।
तो फिर ये है क्या चीज?
ये एक ऐसी सरकार है जो बहुत ज्यादा देखभाल करने वाली है, मतलब जरूरत से ज्यादा।
बिल्कुल माँ बाप जैसी।
वो आपकी हर जरूरत का ध्यान रखती है, आपकी सुरक्षा करती है, आपके लिए सब कुछ आसान बना देती है।
सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, इसमें क्या बुराई है?
बुराई है, और यही इसका खतरा है। टॉकविल ने चेताया कि ऐसी सरकार धीरे धीरे नागरिकों को बच्चा बना देती है। लोग आराम और सुरक्षा के बदले अपनी सोचने की, खुद फैसले करने की, जिम्मेदारी लेने की क्षमता खो देते हैं।
सरकार धीरे धीरे जिंदगी के हर पहलू पर छा जाती है और नागरिक बस सुरक्षित, आरामदायक, लेकिन बिना किसी असली आजादी वाले, जैसे पालतू जानवर बनकर रह जाते हैं।
बाप रे।
मैंसफील्ड कहते हैं कि आज के वेलफेयर स्टेट्स को, कल्याणकारी राज्यों को, टॉकविल की इस चेतावनी को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए।
एक और मुद्दा जिसपे मैंसफील्ड ध्यान दिलाते हैं वो है लोकतंत्र में धर्म की भूमिका।
हाँ, टॉकविल खुद कोई बहुत ज्यादा धार्मिक व्यक्ति नहीं थे, लेकिन उनका मानना था कि लोकतंत्र को धर्म की जरूरत है।
क्यों? ऐसे क्यों लिखता था उन्हें?
क्योंकि जब पुरानी सामाजिक व्यवस्था, जैसे अभिजात वर्ग वाली, खत्म हो जाती है, तो धर्म लोगों को एक नैतिक दिशा दे सकता है, उन्हें सिर्फ अपनी छोटी भौतिकवादी दुनिया से बाहर निकालकर बड़े मकसदों से जोड़ सकता है।
अच्छा।
हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि टॉकविल धर्म को उसकी सच्चाई के लिए नहीं, बल्कि समाज के लिए उसकी उपयोगिता, उसकी सोशल यूटिलिटी के लिहाज से जरूरी मानते थे। धर्म व्यक्तिवाद पर लगाम लगा सकता है।
व्यक्तिवाद मतलब इंडिविजुअलिज्म।
हाँ, जो लोकतंत्र में बढ़ सकता है, तो धर्म उस पर लगाम लगा सकता है और समाज को एक साझा नैतिक जमीन दे सकता है। मैंसफील्ड के मुताबिक टॉकविल मानते थे कि धर्म और आजादी दोस्त हो सकते हैं, बशर्ते धर्म सीधे राजनीति में दखल ना दे।
तो अगर हम मैंसफील्ड की इस पूरी व्याख्या को समेटें तो कुछ खास बातें उभर कर आती हैं। पहली और शायद सबसे अहम, बराबरी बनाम आजादी या उत्कृष्टता का तनाव, टेंशन।
हाँ, लोकतंत्र बराबरी लाता है, जो अच्छा है, पर यही बराबरी कहीं ना कहीं व्यक्तिगत महानता और सच्ची विविधता को कम कर सकती है। मैंसफील्ड इसे टॉकविल की सबसे बड़ी चिंता बताते हैं।
और ये तनाव तो शायद हम अपने समाज में भी महसूस करते हैं, है ना?
बिल्कुल। दूसरी बड़ी बात है व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म। मैंसफील्ड साफ करते हैं कि यह सिर्फ स्वार्थ नहीं है, यह लोगों का समाज से, पब्लिक लाइफ से कटकर सिर्फ अपने परिवार और दोस्तों तक सिमट जाना।
इससे क्या होता है?
इससे समाज कमजोर होता है और सरकार ज्यादा ताकतवर हो जाती है। आज जब हम देखते हैं कि शहरों में लोग अपने पड़ोसियों तक को नहीं जानते, तो टॉकविल की ये बात याद आती है।
तीसरा, वो बीच की संस्थाओं का महत्व, इंटरमीडियरी इंस्टीट्यूशंस, यानी नागरिक संगठन, स्थानीय सरकारें, धार्मिक समूह।
हाँ, ये व्यक्ति और सरकार के बीच संतुलन बनाते हैं, लोगों को जोड़ते हैं और नागरिक गुण, सिविक वर्चूज सिखाते हैं। भारत में पंचायतें हों या रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस हों या अनगिनत एनजीओ,
शायद ये वही भूमिका निभाते हैं जिसकी बात टॉकविल कर रहे थे।
हाँ, शायद। और चौथा, वो नरम तानाशाही का खतरा। ये हमें लगातार चौकन्ना रहने को कहता है, कहीं हम आराम और सरकारी सुविधाओं के बदले अपनी सोचने और जिम्मेदारी लेने की आजादी तो नहीं गंवा रहे।
मैंसफील्ड के मुताबिक ये आधुनिक लोकतंत्रों के लिए सबसे बड़ा अंदरूनी खतरा है।
और आखिर में अमेरिका का उदाहरण, टॉकविल ने उसे सिर्फ मॉडल नहीं माना, बल्कि एक चेतावनी भी। उसमें लोकतंत्र की सफलता भी देखी और उसके खतरे भी। मैंसफील्ड इस बैलेंस्ड नजरिए पर जोर देते हैं।
टॉकविल के लेखन में कई ऐसी पंक्तियां हैं जो मतलब दिमाग में गूंजती रहती हैं। मैंसफील्ड कुछ पर खास जोर देते हैं।
हाँ, जैसे बराबरी की ताकत पर टॉकविल का कहना था कि समानता के सिद्धांत का क्रमिक विकास एक ईश्वर प्रेरित तथ्य है। यह सार्वभौमिक है, स्थायी है, यह लगातार सभी मानवीय हस्तक्षेप से बच निकलता है।
इसका क्या मतलब हुआ?
मतलब ये कि लोकतंत्र या समानता एक ऐतिहासिक जरूरत है, इसे रोका नहीं जा सकता, इसे बस समझना है और सही दिशा देनी है। ये दिखाता है कि लोकतंत्र को वो कितना अनिवार्य मानते थे।
हाँ, और फिर बहुमत की तानाशाही पर वो कड़वी सच्चाई। मुझे अमेरिका से ज्यादा ऐसा कोई देश नहीं पता जहां मन की स्वतंत्रता और चर्चा की वास्तविक स्वतंत्रता इतनी कम हो।
ये सुनकर तो झटका लगता है। मैंसफील्ड बताते हैं कि ये सामाजिक दबाव की ताकत दिखाता है, जो कानून से भी ज्यादा असरदार हो सकता है, बौद्धिक अनुरूपता पैदा करता है
और नरम तानाशाही पर वो भयानक तस्वीर सरकार लोगों को संकुचित करती है, शक्तिहीन करती है, बुझाती है और मूर्ख बनाती है, जब तक कि प्रत्येक राष्ट्र डरपोक और मेहनती जानवरों के झुंड से बेहतर कुछ नहीं रह जाता, जिसका चरवाहा सरकार है।
यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आराम की कीमत क्या हो सकती है, स्वायत्तता का समर्पण।
और एक आखिरी, जो शायद सबसे ज्यादा चुपता है, लोकतांत्रिक लोग स्वतंत्रता का स्वाभाविक स्वाद रखते हैं, लेकिन समानता के लिए उनका जुनून उत्साही, अतृप्त, शाश्वत और अजेय है। वे स्वतंत्रता में समानता चाहते हैं, और यदि वे उसे प्राप्त नहीं कर सकते तो वे गुलामी में भी समानता चाहते हैं।
मैंसफील्ड इसे लोकतंत्र की दुखती रग मानते हैं कि बराबरी की चाहत आजादी की चाहत से ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है।
तो इन सब गहरी और हाँ थोड़ी डराने वाली बातों का आज हमारी जिंदगी में क्या मतलब है? मैंसफील्ड की व्याख्या से हम क्या सीख सकते हैं?
पहली चीज तो साफ है, हमें अपने आसपास के समाज से जुड़ना होगा, एक्टिव होना होगा। वो जुड़ने की कला जिसे टॉकविल ने देखा था उसे जिंदा रखना होगा।
जैसे?
जैसे अपने मोहल्ले के ग्रुप में, किसी क्लब में, किसी सामाजिक काम में हिस्सा लेना। ये सिर्फ टाइम पास नहीं है, ये लोकतंत्र को बचाने का एक तरीका है, व्यक्तिवाद का मुकाबला करने का तरीका।
दूसरी बात, हमें सरकार और उसकी नीतियों को थोड़ा थोड़ा शक की नज़र से देखना होगा।
हाँ, मतलब ये नहीं कि हर बात पर शक करें, पर ये जरूर पूछें कि क्या ये नीति हमें नागरिक के तौर पर मजबूत बना रही है या और ज्यादा निर्भर। कहीं इसमें वो नरम तानाशाही के बीज तो नहीं छिपे।
हमें सिर्फ फायदे नहीं देखने, आजादी पर पड़ने वाले असर को भी तौलना होगा।
बिल्कुल। तीसरा, अपनी सोचने की आजादी को बचाए रखना। आज के दौर में जहां हर तरफ एक ही तरह की बातें सुनने को मिलती हैं, जिसे इको चेम्बर कहते हैं,
हाँ,
उससे बाहर निकलना, अलग सोचना और अपनी बात कहने की हिम्मत रखना मुश्किल हो सकता है, पर टॉकविल हमें यही करने की हिम्मत देते हैं। बहुमत का सम्मान करें, पर उसकी भेड़ चाल में शामिल ना हो।
अलग अलग विचारों को सुनें, समझें और अपनी राय बनाएं।
और चौथी बात शायद थोड़ी निजी लगे पर अहम है। टॉकविल हमें याद दिलाते हैं कि जिंदगी सिर्फ आराम और पैसा कमाने से बढ़कर है। हमें अपने अंदर उत्कृष्टता, किसी बड़े मकसद जिसे वो महानता कहते थे, उसकी तलाश करनी चाहिए।
ये हमारे काम में हो सकता है।
हाँ, काम में हो सकता है, हमारे शौक में या समाज के लिए कुछ करने में। लोकतंत्र को ऐसे नागरिकों की जरूरत है जो सिर्फ बराबर नहीं बल्कि बेहतर बनने की भी कोशिश करें, सिर्फ भौतिकवाद से परे देखें।
तो मैंसफील्ड की टॉकविल की व्याख्या से आखिरी सबक क्या मिलता है? आपके लिए क्या है सबसे अहम बात?
मेरे लिए शायद ये कि लोकतंत्र कोई गारंटी नहीं है। ये कोई ऐसी चीज नहीं जो एक बार मिल गई तो हमेशा रहेगी। ये एक नाजुक पौधा है जिसे लगातार देखभाल, समझदारी और हिम्मत की जरूरत होती है। इसकी सेहत हम नागरिकों पर निर्भर करती है।
और मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि लोकतंत्र का असली खतरा शायद बाहर से नहीं, हमारे अंदर से आता है। वो खतरा है एक जैसा सोचने का, समाज से कट जाने का, आराम के पीछे भागने का और धीरे धीरे अपनी जिम्मेदारियां सरकार पर डाल देने का। टॉकविल और मैंसफील्ड हमें इसी अंदरूनी दुश्मन से सावधान करते हैं।
बिल्कुल, ये लगातार चलने वाला संघर्ष है, एक संतुलन साधने की कोशिश, बराबरी और आजादी के बीच, आराम और जिम्मेदारी के बीच।
और हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज के भारत में जहां हम बराबरी और विकास दोनों चाहते हैं, हम टॉकविल की चेतावनियों को कैसे समझें? कैसे हम व्यक्तिगत आजादी, अलग अलग विचारों और उत्कृष्टता को बचाए रख सकते हैं बिना उस सुरक्षा और बराबरी को खोए जो हम सबके लिए जरूरी है?
ये एक मुश्किल सवाल है।
हाँ, पर शायद आज सबसे जरूरी सवालों में से एक। मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।